लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
ओम शांति। अपने प्यारे बाबा के घर मधुबन तपोभूमि में आप सब मौन तपस्या भक्ति के लिए पधारे हैं, तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सम्मुख हैं आदरणीय शिलू बहन जी। शिलू बहन जी से तो आप सभी परिचित हैं, आप पिछले 40 वर्षों से यहाँ मधुबन में ही रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लगभग 45 से भी अधिक वर्षों से आप बाबा के ज्ञान में हैं। आपने प्रारंभ में बेंगलोर, हैदराबाद, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस में सेवाएं दी, वहां सेंटर भी स्थापित किए, फिर यहाँ मधुबन में ही बाबा ने आपको हर की पौड़ी का टाइटल दिया था कि सभी आत्माएं आपके पास आएंगी, आपको ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी अपने यहाँ राजयोग शिविर होते हैं उनका आप निर्देशन करते हैं, विदेशियों के लिए अनुवाद करना होता है हिंदी से अंग्रेजी में, वो सेवाएं भी आप काफी वर्षों तक संभालते रहे हैं। आप एजुकेशन विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और टीवी में तो आप रोज देखते हैं शिलू बहन को, तो जब से टेलीविजन के प्रोग्राम शुरू हुए हैं तब से आपने टेलीविजन में प्रवचन दिए हैं। आप बहुत ही नम्रचित हैं, मधुर भाषी, सरल चित हैं, और आप हमें बताएंगे भक्ति का लक्ष्य एवं उद्देश्य। तो आदरणीय शिलू दीदी से हम सुनेंगे।
और हमारी डॉक्टर सविता को भी आप सभी जानते हैं ना, है? आप भी मधुबन में रहते हैं, विशेष रूप से शांतिवन में। वैसे डॉक्टर हैं परंतु पढ़ाई पूरी करके बाबा की सेवा में ही लग गई, और कई वर्षों से आपने मधुबन में ही मेडिकल प्रैक्टिस की, फिर दादी जी की आप मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, मेडिकल सेवाएं दादी जी की करते थे, ग्लोबल हॉस्पिटल में आपने सेवाएं दी, और अभी तो विशेष रूप से हमारी साथी हैं, और योग शिविरों में भी आप मदद करते हैं, देश विदेश में भी आप बहुत जगह जाते रहते हैं। अभी अभी हम सब ने बहुत मधुर गीत सुना, लगी लगन बस एक यही। कौन सी लगन लगी? हमें तपस्या करना है और तपस्वी मूरत बनकर वापस घर जाना है। तो इसी लगन के साथ आप सभी यहाँ पधारे हैं। बहुत ही भाग्यशाली के तो क्या पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके सेंटर से जहाँ से भी आप आए हैं वहाँ तो कितने भाई बहने होंगे, पर उन सभी भाई बहनों में से आपको चुना, आपकी लॉटरी खुल गई, ऐसे ही कहेंगे। और आप यहाँ तक पहुँच सके, ऐसे भी होगा कि आपका नाम न भी होगा लिस्ट में, किसी और का होगा पर उनका कैंसिल हो गया, किसी कारणवश और आपकी लॉटरी लग गई, मन नचित। आपको जब कहा गया फलाना नहीं जा रहा है, आप जाएंगे या जाएंगे, आपने कहा रे वाह नेकी और पूछ पूछ। कहा जाता ना नेकी और पूछ पूछ, नेक कार्य में देर थोड़ी करनी होती है। तो मधुबन का आपको निमंत्रण मिला भट्टी करने लिए, एक लॉटरी तो है ही, पर साथ साथ बहुत ऊंचा भाग्य बनाने के लिए भी आप पहुंचे हो यहाँ। जिस भाग्य को जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, जिसको बाबा कहते हैं कदम कदम में पदम। तो कदम कदम में पदम की कमाई आप इन 3 दिनों में बहुत कर सकते हो, क्योंकि मधुबन तपोभूमि है, वरदान भूमि है, परिवर्तन भूमि है, भगवान के पधरामणी की भूमि है, जहाँ स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। ब्रह्मा बाबा मम्मा ने कितनी तपस्या की यहाँ, हमारी दादियों ने कितनी यहाँ तपस्या की, और उसी तपस्या के फलस्वरूप यहाँ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है, एकदम चार्ज्ड है। बाहर नकी लेक के पास जाते और वहाँ का वातावरण, वहाँ के वाइब्रेशंस, और यहाँ पहुँचते इस रोड पर आते आते अंदर प्रवेश करते करते वाइब्रेशंस ही बदल जाते हैं। फरिश्तों की दुनिया लगती है ये, सफेद सफेद इमारतें, सूक्ष्म वतन सा अनुभव हमें कराती है। और बाबा मम्मा दादियों की याद दिलाती है कैसे वो यहाँ विचरण करते थे, इसी आंगन में घूमते थे, और वो भी समय हमारी टीचर्स बहनें याद करती है जब यहाँ अकाउंट्स की मीटिंग्स होती थी, याद है ना। और दादी जी कैसे यहाँ आंगन में बैठ करके सबसे मिलते थे और इतनी खुशियाँ मनाते थे, रास भी करते थे, सब छोटे बच्चे बन जाते थे, सब कुछ भूल करके बस बाबा की गोद में आए हैं यही अनुभव करते थे। पर अभी तो बड़े बच्चे हो गए हैं, तो बड़े बच्चे माना जिम्मेदार बच्चे। और इस भट्टी में भी कोई नई नई तो नहीं आए होंगे, सब पुराने ही आए होंगे, जो 10 साल से ऊपर से ज्ञान ऊपर है ज्ञान में भी हाथ उठाएं, 10 साल से ऊपर तो पुराने ही हुए, और होंगे थोड़े जो 1 साल के भी होंगे, जो 1 साल से हैं वे हाथ उठाएं, है थोड़े से। अच्छा, फिर भी बाबा पुरानों के लिए भी बहुत सुंदर वरदान देते हैं, तो नयों के लिए भी बहुत सुंदर वरदान देते हैं। पुरानों को क्या वरदान देते हैं, ओल्ड इज गोल्ड, पुराने जो हैं वो सच्चा सोने सोने के समान है, क्योंकि इतने वर्षों से बाबा के बन के चल रहे हैं, कितने विघ्न आए होंगे, कितनी समस्याएं आई होगी, माया के भी कितने तूफान आए होंगे, कोई कम तो नहीं है माया, हर मुरली में बाबा माया को भी याद करते ही रहते हैं नहीं? तो इसीलिए उन सब बातों को पार करके अपने आप को मोड़ करके सच्चा सोना बन गए हैं, या यूं कहें सच्चा हीरा बन गए हैं, क्योंकि समस्याएं ही हमें जैसे हीरे को तराशती है और निखारती है, हम इनसे ऊपर आ जाते हैं। तो ओल्ड इज गोल्ड इंग्लिश में कहते हैं, ओल्ड इज गोल्ड बिकॉज इट कैन मोल्ड, क्योंकि जो सच्चा सोना होता है वो मुड़ सकता है, अग्नि में पक करके उसकी खाद निकल जाती है तो सच्चा सोना इतना नरम हो जाता है वो मुड़ सकता है। तो यह बट्टी योग अग्नि के रूप में है जिसमें सोना सच्चा सोना बन जाता है, वो शक्ति बाबा की मिलती है। और नयों के लिए फिर क्या बाबा वरदान देते हैं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, क्योंकि जैसे म्यूजिकल चेयर्स की गेम होती है ना, खेल होता है कुर्सियों का, तो म्यूजिक तो चल ही रहा है और नए नए ऐड होते जाते हैं, पर अभी तक किसी को भी कुर्सी मिली नहीं है। तो इसीलिए नए नए ऐड होते जाते हैं, कुर्सियां तो बहुत है, और जैसे ऐड होते जाते हैं वो पुरानों के साथ मिल जाते हैं, और जब सीटी बजेगी तो सबको कुर्सी मिल सकेगी, या जो नहीं लगेंगे उनको कहाँ कुर्सी मिलेगी अगर नहीं दायरे में आएंगे तो। तो इसीलिए पुरानों के साथ नए भी जुड़ जाते हैं और लास्ट सो फास्ट जाकर फर्स्ट भी आ सकते हैं। इसलिए जो एक साल से भी हैं तो भी चिंता की बात नहीं है, फिर भी आप बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तो क्या करेंगे इस योग तपस्या मौन तपस्या भट्टी में, तो सबसे पहला लक्ष्य तो ये है कि आप यहाँ आए हो बिल्कुल और बातों से फारिग होकर के, यहाँ कोई धंधा धोरी तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, लेकिन गृहस्थी की बातें भी यहाँ नहीं है, कोई बाल बच्चे तो नहीं लाए हैं, कई बार माताओं को अपने बाल बच्चे तो नहीं है लेकिन पोतरे दोतरे तो ले आते हैं, बच्चों में इतना मोह नहीं होता है लेकिन पोतरे दोतरों में बहुत मोह हो जाए, क्योंकि वो ब्याज के रूप में है ना, इंटरेस्ट है। आप बैंक में क्या कुछ अमाउंट रखते हैं वो तो आपका है ही है, लेकिन आप हर मास या हर साल अपना पासबुक अपडेट कराते हैं, फिर उसमें देखते हैं ब्याज कितना मिला, तो ब्याज माना इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट माना शौक, तो इसीलिए माताओं को वो थोड़ी मोह ममता खींचती है। माताएं सब हाथ उठाएं, खींचती है कुछ मोह ममता की नहीं, सब परे हो गए न्यारे प्यारे। तो इसीलिए यहाँ आए हो इन सब से दूर, न खाना पकाने की चिंता, न भाइयों को दफ्तर जाने की या और कुछ गाड़ी पकड़ के कहीं जाने की चिंता, समय पर पहुंचने की ये तो चिंता है कि क्लास में समय पर पहुंचना है और बिल्कुल स्टूडेंट बन जाना है, इसीलिए और सब चिंताओं से मुक्त, सब फिक्रों से फारिग, बस एक ही फिक्र रखना है, हमें क्या बनना है, तपस्वी बनना है, और तपस्वी बन के कर्मातीत बन के वापिस घर जाना है। बाबा ने ऐलान तो कर ही दिया है कि जो कुछ भी होगा अचानक होगा, पहले बताएंगे नहीं, तो अचानक होगा तो उसके लिए सदा तैयार रहना होगा, क्योंकि अचानक कोई चीज होती है तो कभी भी हो सकती है, पहले से पता होता है वे फलानी तारीख आनी है तो चलो एक दिन पहले तैयार हो जाएंगे, पर अचानक होना है तो सदा ही तैयार रहना पड़ता है। जैसे फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, उनको अचानक कहीं आग लगती है तो बुलाया जाता है, उस समय सोचेंगे क्या, अभी तो मैं नींद कर रहा हूँ, अभी तो मैं खाना खा रहा हूँ, अचानक। मिलिट्री वालों को भी अचानक बुलाया जाता है, अचानक आना है, तुरंत पहुंच जाना है, इमरजेंसी लग जाती है तो तुरंत सब होता है। तो अभी समझो कि अचानक का पाठ कभी भी खुल सकता है और चलता ही रहता है कुछ न कुछ रूप में, और उसके लिए वह रेडी होना है। तो एवर रेडी अचानक का पाठ पक्का है तो फिर बहुत काल का अभ्यास यही हमें पास विद ऑनर बनाएगा, क्योंकि अचानक में एवर रेडी में भी बहुत काल का अभ्यास नहीं है तो भी हम पास विद ऑनर तो नहीं बन सकेंगे। इसलिए हर वक्त अटेंशन चाहिए। दुनिया में जो परीक्षाएं आती है उनका स्थान समय मुकरर हो जाता है पहले से कि फलानी तारीख को फलाने स्थान पर आपकी परीक्षा होगी, परंतु परीक्षा पेपर में क्या आएगा वो नहीं बताया जाता है। अगर कई बार लीक भी हो जाता है ना प्रश्न पत्र, तो फिर दोबारा सारा नया बनाते हैं कोई लीक हो गया तो, प्रश्न पत्र नहीं मालूम होता है, बाकी समय स्थान का तो पता होता है। पर यहाँ उसका ऑपोजिट है, उल्टा है, प्रश्न पेपर आउट है। कौन सा है प्रश्न? एक सेकंड में अशरीरी अवस्था, एक सेकंड में न्यारे, और उस समय एक सेकंड की बाजी होगी, उस समय कोई अन्य याद न आए, कोई देहधारी याद न आए, अपनी देह भी याद न आए। इसलिए अचानक, बहुत काल का अभ्यास और एवर रेडी। तो हर वक्त हमारी परीक्षा है, तो इसीलिए कब आएगी परीक्षा वो पता नहीं है, इसलिए हर वक्त तैयार। तो डेट और स्थान फिक्स नहीं है क्योंकि सब जगह आती है, पर पेपर क्या होगा वो पेपर आउट है कि वो पेपर में प्रश्न ये होगा कि एक सेकंड में अशरीरी हो सके, उस समय और कोई देहधारी याद नहीं आए। एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक सेकंड का पेपर, लेकिन कितने पास होंगे, कितने पास होंगे इस पेपर में? आठ, केवल आठ। 108 तो होंगे, 16,108 भी होंगे, 9 लाख भी होंगे, सत्युग की आदि में तो आएंगे। लेकिन कितने भी हो, मैं उसमें हूं या नहीं ये अपने को देखना है। कई कोई ये न समझे आठ ही होंगे तो मेरा स्थान कहाँ होगा। जो अच्छा विद्यार्थी होता वैसे थोड़ी सोचता है कि फर्स्ट तो एक ही आएगा तो मैं कहाँ आऊंगा, लेकिन वो क्या सोचता है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है, सेकंड भी क्यों आऊं। जो अच्छे होशियार स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो जब उनकी रिजल्ट आउट होती है तो उनको 90% मिला मान लो, तो भी उनको ये होता है कि 90 क्यों मिला, 10% मेरे कहाँ चले गए। कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 100 out of 100 मिल सकते हैं, तो मेरे 10% कहाँ चले गए, 10 marks कहाँ चले गए। कई तो पेपर खुलवाते हैं क्योंकि उनको पूरा भरोसा होता है मुझे 100 में से 100 मिलना चाहिए था, 10 कम क्यों मिले। तो वो अपनी गिनती 100 से करते हैं, 100 की भेंट में 90। और जो बेचारे है ही डल स्टूडेंट, हमेशा फेल ही होते रहते हैं, और एक बार पास हो गए, 40% मिल गया या 50% है पास के या 40 जो भी, तो खुश हो जाएंगे, पास तो हो गया। अब तक तो फेल ही होता रहा, अब तो पास तो हो गया, खुश हो गया। क्यों क्यों खुश हो गया? क्योंकि वो जीरो से अपनी भेंट करता है, जीरो। तो जीरो से भेंट करना है हमें या 100 से भेंट करना है? जीरो से भेंट करेंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे, पीछे रह जाएंगे। कई जीरो से कैसे भेंट करते हैं, यही कहते हैं ना, क्या बहन जी आपको क्या बताऊं, मेरा पहला जीवन कैसा था, मैं बहुत शराब पीता था, बहुत गुस्सा था, बहुत, मतलब सारी वो अपनी बातें पुरानी बताते हैं। अब परंतु बहन जी, अब तो मैं बहुत बदल गया हूँ, बहुत बदल गया हूँ बहन जी, क्या बताऊँ, हाँ कितना बदल गए हो, बहुत बदल गया हूँ। अच्छी बात है बदल गए हो, बदलना तो चाहिए ना, वैसे भी बदलना है। बाबा कहते अगर खुद नहीं बदलेंगे तो समय तो बदलेगा ही, तो समय अगर हमको बदले तो आफरीन तो समय को मिल जाएगी कि समय ने इनको बदला, पर खुद बदल गए तो तारीफ किसकी होगी, समय की नहीं हमारी होगी, क्योंकि समय से पहले बदल गए। समय पर बदले तो क्या बड़ी बात हुई, इसलिए एवर रेडी माना समय से पहले, हम तैयार बैठे हैं कभी भी सीटी बजे। तो इसीलिए जीरो से भेंट नहीं करना है, हम बहन जी में तो पहले ऐसी थी, ऐसा था, अभी तो बहुत बदल गया हूं, पर किससे भेंट करना है, बनना क्या है। इसीलिए बाबा कहते हैं एक आंख में रखो मुक्ति और दूसरे आंख में रखो जीवन मुक्ति। बाप और वर्षा, घर और राजधानी, कभी कभी बाबा कहते हैं मम्मा बाबा को भी आगे रखो और लक्ष्य को भी आगे रखो। मुझे बाप समान बनना है, शिव बाबा के भी समान बनना है, ब्रह्मा बाबा के भी समान बनना है। तो यहाँ बाप समान बनना है तो इसीलिए याद शिव बाबा को करना है, पर फॉलो किसको करना है, ब्रह्मा बाबा को, और बनना क्या है, लक्ष्मी नारायण जैसा। जैसे ब्रह्मा बाबा को कितना नशा रहता था, हर मुरली में आप देखेंगे ये बनना है, ये बनना है, क्योंकि हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली चलाते थे, जो पहली गद्दी है हिस्ट्री हॉल में वहाँ बाबा बैठते थे, और जो साइड में दूसरी गद्दी है वहाँ मामा बैठती थी, और बीच में भी एक गद्दी होती थी जहाँ बच्चे बैठते थे, योग कराते थे बाबा मामा के आने से पहले। तो इसीलिए बाबा उस गद्दी पर बैठ करके हमेशा यही कहते थे हमको ऐसे बनना है। लक्ष्मी नारायण का जो ट्रांसलाइट है हिस्ट्री हॉल में वो हर बार मुरली के समय सदा चलता रहता था, तो बाबा उसको देख करके इतनी खुशी बाबा को अनुभव होती थी। श्री कृष्ण का भी ट्रांसलाइट है उसके ऊपर, तो बाबा उसके उसको देख करके बहुत खुश होते थे और गद्दी पर बैठ के नाचते थे, हाँ मैं ऐसा विष्णु बनूंगा, ऐसा बनूंगा, ऐसा बनूंगा। तो बाबा कई बार कहते खगिया मारते थे, खगिया समझते हैं क्या होता है, खगी क्या होता है, ये जो कंधा है ना, हाँ जैसे छोटा बच्चा होता है ना, इतनी खुशी होती है वो, हाँ उसको कुछ दिखाओ तो वो इतना खुश होता है, हंसता रहता और खगिया मारता है, कंधा हिलाता रहता है। तो इसी प्रकार ब्रह्मा बाबा को भी इतनी खुशी होती थी कि मैं ये बनना विष्णु बनने वाला हूँ, कृष्ण बनने वाला हूँ। तो बिल्कुल बाबा को तो और कुछ बुद्धि में था ही नहीं, पर फिर कभी बाबा बूढ़ा बाबा थे तो बाबा कहते थे ये अनुभवी रथ है, इस अनुभवी रथ ने बहुत कुछ जीवन में देखा है। कल भी बाबा ने कहा मुरली में कि बहुत बड़ा व्यापारी था, धर्माऊ निकालता था, धर्माऊ निकालते ना व्यापारी लोग, तो जो दूसरे व्यापारी होते हैं वो तो दो पैसा निकालेंगे, 16 आने एक रुपए में, एक आने में 4 पैसा, तो 2 पैसा निकालते थे। 2 पैसा कितना परसेंट होता है, 16 आना माना अगर कहें तो कितना होगा, 2% कितना होता है भाई, कितना होता है, 2 पैसा कितना परसेंट होता है, 16 आना के हिसाब से देखो तो। तो बाबा ने कहा कि मैं 1 आना निकालता था, 1 आना माना डबल, 4 पैसा 1 आने में होते हैं, तो मैं 1 आना निकालता था। और ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि बाबा की प्रवेशता से पहले भी मैं जब भी कुछ कार्य करता था सर्व के कल्याण के लिए, सर्व के कल्याण के लिए। तो अपना अनुभव तो बाबा भले सुनाते हैं, लेकिन उस समय भी इतनी बुद्धि विशाल थी कि कोई भी द्वार पर आता था हाथ खाली नहीं जाता था, इतना विशाल हृदय था बाबा का। तो फिर बाबा कभी कभी ये भी कहते हैं मुरली में कि हाँ माया बड़ी दुस्तर है, तो ये इंजन है, सबसे पहले माया का तूफान किसको लगेगा? इंजन को लगेगा। पर आप समझते हो ब्रह्मा बाबा को कोई माया के तूफान लगते होंगे क्या? लेकिन बच्चों को, बच्चे फंक न हो जाए, बच्चे निराश न हो जाए, तो बाबा उनको कहेंगे बच्चे कोई बात नहीं, इनको भी होता है, घबराते क्यों, कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे पार हो सकते हो। तो इसीलिए बाप समान हमें बनना है। कैसे बाबा ने कितना कुछ विघ्न पाए, सहन किया। कल भी बाबा की बहुत एक सुंदर जो मुरली में बात थी, क्या पता नहीं आप लोगों ने सुनी या नहीं सुनी, रास्ते में थे, कल की मुरली सुनी? हाँ, जिसमें बाबा ने कहा कि भाई ये जो बताते हैं कि कृष्ण कहता है मैं नहीं माखन खायो, इसका अर्थ क्या है? हाँ, मैं नहीं माखन खायो का मतलब क्या है? हाँ? कौन सुना सकता है एक्यूरेट? हाँ बताओ जोर से। हाँ जी, हाँ शिव बाबा है। तो देखो जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाते ना, मैं सब कुछ करते हुए भी मक्खन तो मुंह में है ही नहीं, माँ ने देखा खोलो मुंह तो त्रिलोक ही दिखाई दिया, मक्खन कहाँ गया? हाँ पता ही नहीं, सब कुछ करके जैसे अपने आप को छिपाया। तो किया तो सब शिव बाबा ने, लेकिन फंसा कौन? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते थे वाट वेंदे ब्राह्मण फाथो, रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया, क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता से पहले तो बाबा को बहुत मान मिलता था, समाज में बाबा का बहुत बड़ा नाम था, लखीराज बाबू, लखीराज बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे, तो इसीलिए इतना समाज में ऊंचा नाम था। और फिर देखो शिव बाबा की प्रवेशता हुई, जादूगरी सारी शिव बाबा की थी, और फंस गया ब्रह्मा बाबा। और बाबा ने ये भी बताया कल मुरली में कि कैसे भाग करके आए, ये भी एक वंडरफुल कहानी है, क्योंकि हैदराबाद सिंध में तो आते ही थे तो बहुत हंगामा हो गया, तो बाबा तो हैदराबाद छोड़ के कराची चले गए। अब कराची चले गए तो अपने परिवार को ले गए, जो बाबा के साथ थे उनको लेकर कराची चले गए। लेकिन जब कराची चले गए तो जो माताएं थी बांधेलियां, वो तो सब हैदराबाद में ही थी, जो आती थी छिप छिप के आती थी, और उनको जब पता चल गया कि बाबा तो कराची चले गए, अब कैसे बाबा से मिलेगी? कराची 4 घंटा दूर था, हैदराबाद और कराची में 4 घंटे का फासला। तो उन्होंने क्या किया, रातों रात 12 बजे ट्रेन जाती थी और हैदराबाद 12 बजे निकलती थी और सवेरे 4 बजे कराची पहुंचती थी। तो उन्होंने क्या किया, सब ने एक प्लान बनाया कि हम रात को भाग जाएंगे, और सब ने मिल करके रात को निकल गए अपने घर से और ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गए, और 12 बजे की ट्रेन पकड़ के 4 बजे बाबा के पास पहुंच गए कराची में। बाबा तो देख के हैरान हो गया, ये क्या हुआ, ये कहां से आ गई इतनी सारी माताएं? तो अब ऐसे थोड़ी बाबा निकाल देंगे 4 बजे जाओ वापस, ऐसे तो नहीं निकालेंगे। तो बाबा ने तो उनको स्थान दिया, लेकिन जब उनके घर वाले उठे, कहां चले गए, मेरी माँ कहां चले गई, मेरी बेटी कहां चले गई, हाँ मेरी पत्नी कहां चले गई, ये सारा हो गया। तो फिर पता चला, अरे वो तो कराची चली गई बाबा के पास। तो ये भी तो है ना कि भागवत में कि कृष्ण ने भगाया, पटरानी बनाया है ना, क्योंकि वो सारे जो असुर बना उनके वो गोपियों के ही तो उनको बहुत तंग करते थे, पर ये तो कृष्ण की दीवानी थी, तो कैसे वो भाग गई और कृष्ण ने भगाया उनको, बहुत कुछ ऐसे बताते हैं। फिर पटरानी बना दिया है ना, जाने क्या क्या कहानियां भागवत में। तो लोगों ने कहा कि देखो ये एक दादा लेखराज अपने को कृष्ण कहलाता है और उसको 108 रानियां मिली है, और वो कहता हमको तो 16108 चाहिए, तो अभी तो बहुत रानियां उसको चाहिए, तो बाबा कहते ये मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ, इसलिए बाबा की पत्नी बाबा के साथ ही थी ना, वो तो साथ ही थी, परिवार साथ में था, पर ये शिव बाबा की करामात थी। शिव बाबा ने सब कुछ किया, कैसे साक्षात्कार कराए, कैसे भागे, क्या लगन थी उस समय। तो पर फंस गया ब्रह्मा बाबा, तो इसलिए कई बार बाबा की मुरली में आता है कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते बाबा कैसे मैं फंस गया, मेरी इतनी ग्लानी कर रहे हैं लोग। तो शिव बाबा कहते कोई बात नहीं, द्वापर युग से तुमने भी बहुत ग्लानी की है। सर्वव्यापी कह के 84 लाख योनियां कह के पत्थर भीतर में कह के ग्लानी की, लेकिन कोई बात नहीं है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को एक मानो ये शिक्षा दे रहे कि ये बातें आएंगी, पर घबराना नहीं है, क्योंकि सच की जो नाव है वो हिलती बहुत है लेकिन डूब कभी नहीं सकती है। तो इसीलिए अब उस नाव में हम सभी बैठ गए हैं और पार हो रहे हैं, इसलिए पीछे मुड़ के देखने का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे तो लक्ष्य कोई देखना है, उद्देश्य कोई देखना है, क्या बनना है, कहाँ जाना है। तो अगर घर जाना है तो कैसा बनना है, राजधानी में जाना है, नई दुनिया में जाना है तो कैसा बनना है। तो इसके लिए न पीछे मुड़ के देखना है न साइड में देखना है, क्योंकि साइड में भी बहुत देखते हैं, साइड सीइंग होती है ना, तो साइड सीइंग तो वो चीज तो वही रह गई, हम तो आगे जा रहे हैं, पर अगर हम उसी में फंस गए तो आगे को हम नहीं देख सकेंगे। तो साइड सीन कौन सी होती है, दूसरों को देखना, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हाँ ये भी तो ऐसा ही कर रहा है, ये भी तो ऐसा ही है, हमने किया तो क्या बड़ी बात हुई। तो ये दूसरों को देखना, तो हमको न दूसरों को देखना है न अपने भूत को देखना है, पास्ट को देखना है, लेकिन केवल भविष्य को ही देखना है। मुझे क्या बनना है, मुझे क्या बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे संपन्न बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे बाप समान बनना है। तो इसीलिए अब ये 3 दिन, आज 18 तारीख है, 19, 20, 21, ये 3 दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक आपको मौन में रहना है। रहेंगे मौन में, रहेंगे ना, जो जो समझते हम तो रह नहीं सकते मौन में वो हाथ उठाओ, कोई नहीं, सभी रह सकते हैं। मौन में रहना सहज है या आवाज में आना सहज है, कौन सा सहज है, कौन सा सहज है? आवाज में आना ज्यादा सहज है ना, क्योंकि बहुत कंट्रोल करना पड़ता है मौन में रहने में, लेकिन मौन में रहना सहज होना चाहिए, बोलना ही नहीं है तो सोचना ही नहीं है। परंतु मौन का मतलब ये भी नहीं है कि अंदर बहुत सोच चलता रहे, केवल मुख का मौन नहीं है, मन का भी मौन है। तो आपको मिला है ना, ये क्या मिला है लिखत में, मौन तपस्या भट्टी लिखा है ना, क्या लिखा है, हाँ? मौन तपस्या भट्टी, पर अगर आप बोलते रहेंगे ये बैज लगाकर तो मौन तपस्या बटी हुई क्या? मुझे याद है एक डबल विदेशी था भाई, बड़ा रमणीक था, तो साइलेंस का बैज लगा करके हर वक्त घूमता रहता था, तो और बातें करता रहता था, साइलेंस का बैज और हर वक्त बात कर रहा है। तो मैंने उसको कहा भैया ये साइलेंस का बैज का नाम बदनाम कर रहे हो, क्योंकि साइलेंस माना क्या, साइलेंस में रहना है ना, साइलेंस का बैज लगाना माना क्या, क्योंकि विदेशी साइलेंस का बैज लगा कर रखते। तो कहता है बहन जी ये मेरे लिए नहीं है। ये दूसरों के लिए, क्योंकि वो साइलेंस पढ़ेंगे, मैं तो पढ़ नहीं सकता हूँ अभी भी, देखो ना भाई क्या लिखा है, वो पहले देखेंगे पता नहीं क्या लिखा है। तो खुद तो पढ़ नहीं सकते ना, पर दूसरे पढ़ सकते हैं सामने से, तो साइलेंस उनको उनको साइलेंस में रहना है, मेरे से बात नहीं करे, वो क्यों करते हैं बात, वो करेंगे तो मैं भी करूंगा, मैं तो पढ़ नहीं सकता हूँ ना। ऐसे नहीं करना आप। मैं तो थोड़ी पढ़ सकती हूँ अपना बैज या पढ़ सकता हूँ, दूसरे मौन में रहे। फिर वो मौन में नहीं रहता है तो मैं क्यों रहूं, वो नहीं रहता है तो मैं भी नहीं रहूंगा। लेकिन हमने पिछले साल जो बठिया हुई ना, हमने उसमें उनको जब कहा तो सचमुच 99% फेल हो गए, 99% फेल हुए। भले उन्होंने लक्ष्य रखा, सवेरे लक्ष्य रखते थे मैं बिल्कुल आज साइलेंस में रहूंगी, लेकिन फिर भी फेल हो गए। परंतु ऐसे थे, दो हर भट्ठी में निकलते थे, क्योंकि 200 की भट्ठी बुलाते, 200 200, तो दो जरूर निकलते थे जिन्होंने 3 दिन बिल्कुल बात नहीं की। अभी आपका भी देखेंगे कौन इतने बहादुर निकलते हैं जो सचमुच पास विथ ऑनर बन जाते हैं इस भट्ठी में। पास विथ ऑनर माना कंप्लीट मौन, आपको देख के दूसरों को प्रेरणा मिले, आपको देख के उनको भी उनका भी मनोबल बढ़ जाए कि मुझे भी रहना है, चलो हो गया सो हो गया। हाँ, कई बार ऐसे होता है, आवश्यक होता है तो भले इशारे से आप कह सकते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहा जाता है कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, सोच कर बोलो। इन चारों का आपस में संबंध है। पहले हम लोगों की थैली निकलती थी और वो स्लोगन है कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, फिर लास्ट में सोच के बोलो, वो भी जोड़ दिया उसमें, क्योंकि चारों का आपस में बड़ा संबंध है। क्या संबंध है? कम बोलेंगे तो अवश्य मधुर बोलेंगे, क्योंकि कम बोल तो कड़वे तो नहीं होंगे ना, कड़वे होते तो ज्यादा निकलते हैं, तो कम बोलेंगे तो जरूर मधुर बोलेंगे। मधुर बोलने का लक्ष्य है तो जरूर धीरे बोलेंगे। कड़वे शब्द धीरे तो नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। तो कम बोलेंगे तो मधुर बोलेंगे, मधुर बोलेंगे तो धीरे बोलेंगे, धीरे बोलेंगे तो सोच कर बोलेंगे, और सोच कर बोलेंगे तो कम बोलेंगे। तो चारों का आपस में कनेक्शन है। लेकिन बहुत जरूरी हो तो कोई बात नहीं, परंतु लक्ष्य यही रहे कि मुझे बिल्कुल मौन में रहना, अपनी मस्ती में रहना है। और अगर लक्ष्य है ना तो सोचना भी कम हो जाएगा, बोलना है इसीलिए सोचना भी ज्यादा हो जाता है। ब्रह्मा बाबा को हमने देखा बाबा की अंतिम दिनों में, बाबा इतने शांत रहते थे। समझो बाबा के पास कोई गया, बाबा को उसने पत्र लिखा, मानो हमारी मनोहर दादी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाती थी हमको। मैं मनोहर दादी के साथ 40 साल 30 साल तो रही यहाँ मधुबन में, तो कैसे दादी ने सुनाया कि अपना अनुभव सुनाया कि वो करनाल में रहती थी और फिर करनाल से आती जाती थी बाबा के पास। तो एक दिन दादी ने मतलब मधुबन आई तो चाहे अपना सुनाया किसी और का सुनाया, मतलब कुछ ऐसी बात थी वो सुना रही थी कि उस बहन ने बाबा को बहुत सुंदर पत्र लिखा, सेवा समाचार का पत्र, बहुत समाचार डिटेल में लिखा, क्योंकि बाबा को लिखते थे डिटेल में समाचार। तो बाबा के पास जब आते थे तो बाबा उनकी महिमा करते थे, बच्ची आपका सेवा समाचार पाया, और पत्र में भी लिखते थे बहुत अच्छी सेवा की, बहुत उमंग आदि आदि। अब वो पत्र लिखने के बाद वो खुद आ गई और बाबा को सुनाने लगी, बाबा मैंने ये सेवा की, मैंने ये सेवा की, मैंने ये सेवा की, बड़ा चढ़ा करके थोड़ा बताने लगी। अब बाबा को उसको चुप करना कराना था, तो बाबा ने सीधा तो नहीं कहा बस बस हो गया, तो बाबा ने उसको बहुत प्यार से बहुत रिस्पेक्ट से कहा, बच्ची ये आपने पत्र में भी लिखा था ना? कहते हाँ बाबा, मैंने पत्र में तो और भी डिटेल लिखा और नशा दिखाने लगी। तो बाबा ने कहा बाबा जानते, बाबा जानते माना बड़े रिस्पेक्ट से कि अभी और बताने की जरूरत नहीं है, बाबा जानते हैं। यानी बाबा इतना शांत होते गए, बाबा एकांत प्रिय होते गए, बाबा ने ये जो टावर ऑफ पीस सामने है, टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ माना शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ और पवित्रता स्तंभ, ये बाबा ने बाबा के अव्यक्त होने से 6 मास पहले से बहुत कुछ इस पर कहा, बच्चे तुम्हें लाइट हाउस बनना है, बच्चे तुम्हें शांति स्तंभ की तरह बनना है, शांति चारों ओर फैलाना, क्योंकि बाबा खुद रहते थे ऐसे, बिल्कुल बाबा के सामने आते ही बात करने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि बाबा इतनी इतनी ऊंची स्थिति में होते थे और हम लोगों की बातें तो क्या छोटी मोटी दुनियावी बातें क्या होगी, जो प्रॉब्लम्स थी वही कुछ बताते होंगे, लेकिन बाबा को जब देखते थे तो लगता था बाबा की स्टेज कितनी ऊंची और ये छोटी छोटी बातें बाबा को सुनाई, सचमुच महसूस होता था, तो मुख से कुछ शब्द ही नहीं निकलते थे, वो सब भूल जाता था। और वही अनुभव दादी जी के सामने भी हमने किया, दादी जी के सामने जाते थे, दादी की स्थिति इतनी ऊंची और हम सोचते मैं दादी को ये सुनाऊंगी, पर दादी के सामने जब जाते थे ना प्रकाशमणि दादी के साथ, तो सब बातें भूल जाते, क्योंकि दादी की स्थिति कितनी ऊंची थी, सचमुच कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर रही थी, ये अनुभव हो रहा था और उपराम होती गई, और सचमुच जब दादी अव्यक्त हुए तो सब कुछ हैंडओवर कर दिया था, इसलिए बड़ा बहुत सुंदर रूप से सब परिवर्तन हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई है ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था सब, दादी के होते हुए ही बहुत सुंदर दादी ने सारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे पूरा संभाला था, कैसे शांति वन भी सब बन गया, यानी ऐसे जैसे कोई कई बार होता है ना, कोई जो मेन हेड है वो जाता है तो उसके बाद सब ऊपर नीचे हो जाता है, सब डावाडोल हो जाता है, क्योंकि उसने न किसी को नियुक्त किया, उसे नहीं कुछ भी नहीं, अचानक हुआ, परंतु ये तो बाप दादा का कार्य, भगवान का कार्य, कोई इंसान का तो कार्य है ही नहीं, इसलिए ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हुए तो भी कितना सहज सब कुछ हो गया, नहीं तो कोई सोचे कोई हेड जाता है, गुरु जाता है तो सारी संस्था खत्म हो जाती है ना, को बहुतों ने कहा अभी देखना इनका दादा लेखरा चला गया ना, अभी देखना क्या होगा, लेकिन बाबा की अव्यक्त होने के बाद तो दिन दुगनी रात चौगनी गति से ये कितना आगे बढ़ता गया, फिर दादी की अव्यक्त होने के बाद तो और भी इतना आगे बढ़ा, तो इसीलिए ये तो कोई नहीं अभी कह सकेगा कि हाँ अभी ये संस्था गई, क्योंकि ये तो सारे विश्व में व्यापक हो गई है, विश्वव्यापी संस्था है, सबकी नजर है हमारे ऊपर, हम कहाँ भी जाते हैं ना, देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं, कभी भी सब समझ जाते हैं ब्रह्मा कुमारी है। तो देखिए तो हमको क्या करना है, फेमस तो हो ही गए हैं, बैच तो लगा हुआ है, फेमस हो गए ना, बहुत प्रख्यात तो हो ही गए हैं, टीवी पर तो सब देखते हैं, और सचमुच हमको तो कैसे लगता है टीवी पर हम आते हैं तो क्या आप टीवी पर आते हो ना, आप टीवी पर आते हो तो हमको उस समय लगता है कि सचमुच हमको कैसे एग्जाम्पल बनना है, देश विदेश में भी सब हो जाता है, मुझे याद है हम पहली बार जब मॉरिशस गए थे 75 में, वहाँ सेंटर स्थापित करना था तो टीवी पर हमारा प्रोग्राम, मॉरिशस तो छोटा सा देश, तो टीवी पर हमारा प्रोग्राम आया, अब छोटा सा देश, पूरा ही देश छोटा सा ही है, तो अब टीवी का आधे घंटे का प्रोग्राम था, अब हमने तो दे दिया प्रोग्राम, लेकिन जैसे ही हम जहां भी जाते थे, सब्जी खरीदने जाते थे, दुकान में जाते थे, काम, वो आप टीवी पर आए थे कल, आप टीवी पर आए थे, तो हमको तो लगा मैं तो टीवी पर देख करके पूरा हो गया, लेकिन सारे देश को पता चल गया क्योंकि टीवी पर आ गए ना, मानो कि वो बहुत ही फेमस प्रोग्राम था हिंदी में, क्योंकि हिंदी लोग बहुत है वहाँ, तो कहने का भाव है कि अब ये संस्था छोटी मोटी तो नहीं रही है और हम उसके फाउंडेशन में हैं, तो हमको कैसा हमारा व्यवहार करना है, पर उसके लिए अपना फाउंडेशन भी बहुत मजबूत चाहिए, बाबा ने कल भी कहा कि रुस्तम से रुस्तम होकर के माया लड़ेगी, कमजोर से रुस्तम क्या लड़ेगा, एक ठोंसा मारे और गया। तो जो रुस्तम होता है, बहादुर होता है, उसको तो बहादुर चाहिए ना लड़ने के लिए। तो माया भी रुस्तम बन जाती है, हम रुस्तम है तो माया भी कम नहीं है। कभी नाक से पकड़ेगी, कभी कान से पकड़ेगी। बाबा बताते, लिस्ट बनाई किसी ने बाबा ने मुरली में, माया के लिए क्या क्या का क्या कैसे पछाड़ती है। कभी नाक से पकड़ेगी, फिर कान से पकड़ेगी, फिर चोटी से पकड़ेगी, फिर मुक्का मारेगी, फिर नीचे गिराएगी, और फिर बेहोश कर देगी, और फिर आखिर मार भी डालेगी। ऐसे भी माया कर देती है। तो माया का तो राज्य है ही है, लेकिन हम ऐसे थोड़ी कहेंगे माया का राज्य जा रहा है या अभी बहुत है। दुनिया में तो माया का बहुत प्रभाव है, और बाबा ने ये भी कहा है कि वो दुनिया माया के प्रभाव के कारण वो तो नीचे जाती जा रही है, नीचे जाती जा रही, दुर्गति को पाती जा रही है, पाती जा रही है। परंतु बाबा के बच्चे चढ़ती कला, उड़ती कला, और फरिश्ता बन करके हमें उड़ना है। तो यहाँ पर आप आए हो इस भट्टी में, ऐसा 3 दिन में इतना तपना जो बिल्कुल निखार आ जाए, सच्चा सोना बन जाए, और जब आप वापस जाओ तब सबको महसूस हो, अरे ये तो फरिश्ता बन गया। केवल बदल गया ये नहीं कहे, क्या कहे, ये तो फरिश्ता बन गया। फरिश्ता किसको कहेंगे, जिनके हड्डी मांस नहीं होते ना, या जिनका पैर धरती पर नहीं होता, वो फरिश्ता कहलाते हैं। और फरिश्ता वो जिनकी परछाई भी नहीं होती है ना। फरिश्ता और इंसान में क्या अंतर है, इंसान के पैर धरती पर होते हैं, हड्डी मांस होता है, और फरिश्ता धरती पर भी पांव नहीं, हड्डी मांस भी नहीं, और परछाई भी नहीं, परछाई नहीं होती कि खुद ही लाइट के होते ना, तो लाइट की क्या परछाई होगी, हड्डी मांस है तो परछाई होती है। तो इसीलिए हमको ऐसा फरिश्ता बनना है, डबल लाइट बनना है, इतना हल्का भी बनना है और इतना तपना है जो उस आग में सोना निखर जाए, सच्चा सोना बन जाए, सच्चा हीरा बन जाए, और फरिश्ता बन के हम बाबा के वतन में उड़े। तो वतन में उड़ना है, फरिश्ता बनना है। इसलिए आपकी जो योग भट्टी में टॉपिक्स भी रखी है उसी अनुसार रखी है, कितनी आप शक्ति यहाँ से भर के जाएं। और हमारे अनुभवी भाई बहने ये सब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपको भी अनुभवी बनाएंगे, ठीक है। घर बार याद तो नहीं आएगा, याद तो नहीं आएगा, सब कुछ कह के आयो, फोन वोन तो नहीं करेंगे वो लोग, फोन ही स्विच ऑफ कर दिए, सबको कह दिया कि हम 3 दिन हमसे कोई फोन पर बात नहीं करे। आप यहाँ पहुँच गए, उसका समाचार तो दिया होगा ना, पहुँच गए आबू, फिर समाचार दे करके स्विच ऑफ, उनको बोलो 3 दिन कोई फोन न करे। ये हो सकता है कि यहाँ मोबाइल बजते रहेंगे, मोबाइल यहाँ नहीं बजेंगे ना, कभी किसका म्यूजिक बजता रहता है, बिल्कुल नहीं बजना चाहिए, बिल्कुल दुनिया की निगाहों से दूर, हवाओं से दूर। ये दूसरा ही एक संसार है, इस स्वर्गीय संसार में अपने आप को 3 दिन तक ढालना है, फिर तो जाना ही है, फिर वापस उस दुनिया में जाना ही है। तो जहाँ आए हो वहाँ का पूरा पूरा लाभ लेना है, यहाँ से शक्ति भर के जानी है। एक अनुभव आपको सुनाती हूँ कि एक बार दादी जानकी के पास एक बहन गई। अब मधुबन में तो रही, लेकिन अब जाने का समय उनका आया तो बड़ी उदास। तो दादी ने पूछा, इतनी उदास क्यों हो? तो दादी को कहती है, दादी मेरे को ये बुद्धि में आता है, मैं वापस जाऊंगी, फिर वही झमेले, वही झंझट, वही ये सब, तो दादी वो याद करती हूँ ना तो बड़ा फिर से सो फिर दुखी हो जाती हूँ। तो दादी ने उनको कहा बहुत अच्छी बात कही, तो यहाँ जो इतने दिन रही वो क्या किया, वो क्या किया, शक्ति नहीं भरी क्या? तो सोच में पड़ गई, इतने दिन जो रही शक्ति नहीं भरी क्या, वही सोचती रही। तो फिर दादी ने कहा अच्छा कल मत जाओ और रहो 8 दिन, और रहो 8 दिन और पूरी शक्ति भरो। विदेश की बहन थी क्योंकि बहुत दूर से आई थी, ब्राजील से आई थी, पश्चिमी दुनिया का अंतिम हिस्सा बहुत दूर, और बहुत खर्चा, कई तो इतना खर्चा करते हैं जो समझते पता नहीं दोबारा हम जा सकेंगे या नहीं। कोई तो अपनी गाड़ी बेच देते, मकान बेच देते हैं, ये बेच देते टिकट लेने के लिए, इतनी महंगी होती है। पर बाबा के घर पहुंचते और बाबा के घर पहुंच करके भी शक्ति नहीं भरी तो ये तो गलत हो गया। तो दादी ने उनको रोका, आपको नहीं कहेंगे और रह जाओ, आपको तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन और दादी ने उनको कहा भी ये 8 दिन और कुछ नहीं सोचना है, वहां जाके क्या करोगी कुछ नहीं सोचना है, बस भरते जाना है, भरते जाना है, जैसे कि दुनिया से मर गई हो बस यही भरते जाना है। और फिर जब फिर 8 दिन के बाद जब जाओ तब आना फिर बताना। और सचमुच फिर जब जाने का समय आया 8 दिन के बाद, कहती है नहीं तो 3 हफ्ता रही थी, क्योंकि दूर से जो आते ना उनको 3 हफ्ते की छुट्टी है विदेश के, जो नहीं तो 15 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते, पर जो ब्राजील साउथ अमेरिका से आते हैं उनको 3 हफ्ते की छुट्टी देते हैं मधुबन में रहने की। अब उनको तो 1 मास की मिल गई, टिकट भी चेंज करा ली, सहज करा सकी वो चेंज, तो नहीं तो टिकट भी चेंज नहीं करा सकते फिर और पैसे लगते, पर वो सहज करा सकी थी, इसमें कई प्रकार की टिकटें आती है। तो फिर उसने दादी को प्रॉमिस किया कि अभी मैं ऐसे बिल्कुल भरपूर होके जा रही हूँ। और वहां से चिट्ठी लिखी कि दादी मैं आते ही ये विघ्न आया, लेकिन मैं तो शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति। फिर दादी ने ये क्लास में सुनाया विदेशियों के क्लास में कि देखो ऐसे भी हमारे सामने उदाहरण है, इसलिए कभी नहीं सोचो वहां जाऊंगी तो क्या होगा, हाँ वहां जाऊंगी तो फिर कहीं ये प्रॉब्लम ये ना आए, पर आप शक्ति भर के जाओगी, अगर आई भी तो आप सहज उसका सामना कर सकोगी ना, ताकत आ गई ना। हाँ ताकत नहीं है तो फिर डर है पता नहीं कैसे कर सकूंगी, तो इसीलिए ये मत सोचो वापस जाऊंगी पता नहीं क्या होगा, वापस जाऊंगा क्या होगा, अच्छा ही होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा, मैं यहाँ शक्ति भर रही हूँ। और इस शक्ति के सामने वो परिस्थिति क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इतनी हिम्मत भरी, फिर बाबा की मदद मिली तो जो विघ्न आएगा भी ना वो सूली से कांटा हो जाएगा, क्योंकि बाबा की मदद है, बाबा साथी है। परंतु उसके लिए शक्ति भरो, ये भरने का समय है। मिलिट्री के अंदर हम देखते हैं माउंट आबू में आते हैं ना, यहाँ पर माउंट आबू में आर्मी एयरफोर्स के क्वार्टर्स हैं, तो यहाँ वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। रात को आप लोग आवाज सुनेंगे ठा 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 ठा, वो बंदूक चलाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए ना निशाने पर मारने के लिए। तो यहाँ ज्ञान सरोवर के रास्ते पर, वो यहाँ से ज्ञान सरोवर जाते हैं तो बहुत बड़ा मैदान है वो मिलिट्री वालों के लिए, ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। और उनको निशाना देते कि यहाँ आपको मारना है, दूर से मारना है। तो ये जो माउंट आबू उनका स्थान है, ये प्रैक्टिस करने के लिए उनको 3 मास यहाँ रखते हैं, फिर उनको मैदान में भेजते हैं। तो यहाँ ये पीस टाइम है, शांति का टाइम, माउंट आबू वो शांति का स्थान है, तो इसलिए वो यहाँ आते हैं ताकि इतने भरपूर हो जाए जो फिर जाकर के लड़े। अभी भी देखो आज भी हम सुन रहे थे कश्मीर में बहुत हंगामा हुआ है, इतना अलगाववादी जो उनको छोड़ा ना, फिर तो पकड़ लिया, लेकिन जो उसने भड़काऊ भाषण किए उसके कारण वो जो लड़के हैं उन्होंने बहुत कुछ किया, तो पुलिस की फायरिंग हुई है, मरे हैं लोग, बहुत कुछ हुआ है। जम्मू के आए हैं आप लोग तो सुनते ही रहते होंगे। ये आपके पास नहीं आता कोई समाचार, लेकिन कुछ तो समाचार तो सुनते ही होंगे। कुरुक्षेत्र में वाले तो बैठे ही कुरुक्षेत्र में जम्मू वाले भी कश्मीर से तो बहुत दूर नहीं है, लेकिन बहुत हंगामा आज हुआ है, बहुत बड़ी न्यूज बन गई है। लेकिन आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, आप कहाँ बैठे हो, बाबा की गोद में बैठे हो बिल्कुल, इसीलिए और कुछ भी नहीं सोचना है, न्यूज भी नहीं सोचना है क्या हुआ, जरूरत नहीं, कुछ होगा तो हम बता देंगे आपको, आप चिंता नहीं करना और घर से कोई समाचार नहीं आया, माना नो न्यूज इज गुड न्यूज, अच्छी न्यूज है, समाचार कुछ नहीं आया, माना अच्छा ही है, ठीक है, सब शांति है। तो इसीलिए बिल्कुल दुनिया की निगाहों से दूर, बस अब घर चलना है, अब बाप समान बनना है, बस यही लक्ष्य रख के ये 3 दिन भट्टी करना, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो अभी आपको दिनचर्या बताएगी सविता बहन, फिर हम आ जाएंगे 7:30 से पहले, हा? जी चलो 2-3 मिनट बैठ के फिर थोड़ा आपको सुनाएगी और फिर हम आ जाएंगे, नहीं तो मैं आती हूँ। आप आ रही है, बोला, अच्छा बोला, ओके ओके, तो चलिए 5 मिनट हम फिर से शक्तिशाली योग में बैठेंगे, उसके बाद सविता बहन आपको 3 दिन का प्रोग्राम कैसे रहेगा वो बताएंगे, और फिर शशि बहन आएंगी और शशि बहन आपसे मिलेंगे और फिर सबको टोली देंगे।
शिलू दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी ने समझा कि बाबा ने जो ये 3-4 दिन की लॉटरी हमको दी है, इसका हमें पूरा सदुपयोग करना है, पूरी तरह से मौन में रहना है। वहां देखो होते हैं तो कारोबार होती है, घर गृहस्थी की कई बातें होती हैं, और हम चाहते हुए भी मौन में नहीं रह पाते हैं, लेकिन यहाँ तो उन सब बातों से फ्री हैं, पूरी तरह से छुट्टी पर हैं, ऐसे कहेंगे तो, इसीलिए मोबाइल से भी बातें नहीं करनी है, सुना ना, मोबाइल भी बिल्कुल स्विच ऑफ रखेंगे, खासकर क्लास में आएंगे तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा, और अगर कोई बहुत ही जरूरी बात करनी है तो ही बात करेंगे। और राजयोग शिक्षिका भी हैं, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, निवेर भाई जी के साथ पूरे जो विदेशी हैं उनके कार्यक्रमों को आप देखते हैं, और साथ साथ उनके आवास निवास की व्यवस्था भी करते हैं, जो भी विदेशी भाई बहने यहाँ आते हैं उनका आवास निवास भी देखते हैं, और देश विदेश में अनेक बार आपने यात्राएं की हैं। तो अभी हम थोड़ा आपके अनुभव सुनते हुए और फिर
ओम शांति। बाप दादा के विशेष कर्म भूमि, चरित्र भूमि, प्यारी प्यारी दादियों की बाप दादा के साथ रहकर विशेष ऐसी तपस्वी भूमि में बाप दादा ने हम सबको तपस्या कराते हुए बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराए। तो इस सीजन के पहले ही टर्न में कुरुक्षेत्र और जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को भट्टी करने का मौका मिला, कितना बड़ा सौभाग्य है। तो जब कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो बाप दादा सामने आते हैं, कुरुक्षेत्र की धरनी ऐसी है जहाँ पर साकार बाबा के टाइम पर बहुत सेवाएं गुप्त रीति से चली, और बाबा कुरुक्षेत्र को भी याद करते रहते, और साथ साथ जम्मू भी, जम्मू में जो सेवाएं हुई वह भी साकार बाबा के टाइम पर आरंभ हो चुकी थी। इतनी कठोर धरती होते हुए भी उसमें सेवाओं का बीज ऐसा डाला कि आज उसका फल इतना अच्छा निकल रहा है कि जम्मू कश्मीर में वातावरण कैसा भी होता है लेकिन बाबा की शक्ति से तपस्या से उस वातावरण से बाबा के बच्चे बिल्कुल सेफ रहते हैं, जिसको बाबा कहते हैं ना कि बाहर आग लग रही है लेकिन बिल्ली के बच्चे पुंगरे बिल्कुल सेफ हैं। तो आप सभी का मधुबन में बाप दादा, दादी जानकी जी, गुलसा दादी, रतमयन दादी, अमोइनी बहन, मुन्नी बहन तथा सब की तरफ से पांडव भवन में बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ जिस स्थान पर आपको तपस्या करने का मौका मिल रहा है, ये एक बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। आप में से कई बहुत कम होंगे जिन्होंने साकार बाबा को देखा भी होगा, लेकिन साकार बाबा के बाद अव्यक्त बाबा ने हम बच्चों को चारों धाम की यात्रा का बताया है, महत्व बताया है। जब शांति वन में आते हैं तो बहुत सारे भाई बहने यहाँ पांडव भवन में आकर के चारों धाम की यात्रा करते हैं, लेकिन जब भट्टी में रहते हैं तो उस समय चारों धाम का बहुत गहराई से हम अनुभव करते हैं। और ये स्थान ऐसा है, जब आप भट्टी में हैं तो उस समय एक बात का ध्यान रखना है कि आप जितना बाबा के साथ का अनुभव करना चाहें कर सकते हैं। कई बार कई भाई बहने बाबा को लेना देते हैं, हम देरी से क्यों आए, साकार बाबा को क्यों नहीं देखा, मामा को क्यों नहीं देखा है, लेकिन भट्टी में आप ऐसा अनुभव करेंगे कि साकार बाबा ही आपको चला और साकार बाबा ही सब अनुभव कर रहे हैं। और प्यारी प्यारी मम्मा और प्यारी प्यारी दादियां, खास करके दादी प्रकाशमणि जी, दादी चंद्रमणि तो पंजाब जोन में रही, मनोहर दादी तो करनाल से कुरुक्षेत्र में बीच बीच में आती ही रहती थी। तो इस भट्टी में आप अनुभव करेंगे कि एडवांस पार्टी के सभी दादियां और भाई आपके साथ कैसे आपको ऐसे अनुभव कराते हुए ऊपर की ओर उड़ाते हुए लेके जाएंगे। तो भट्टी में कोई भी बाबा से ऐसे बुलाने की बात नहीं करे, बाबा के साथ गोदी में बैठ जा। और जब आप यह भट्टी कर रहे होंगे तो पांडव भवन एक ऐसा स्थान है जिसमें सबको अधिकार है यहाँ आने का। जब शांति वन में शिविर होता है ना, उस समय दोपहर के टाइम ढेर भाई बहने आ जाते हैं, ज्ञान सेवा में विंग प्रोग्राम होता है, दिन के समय भी काफी गेस्ट आ जाते हैं। तो आपको पांडव भवन में रहते हुए दो प्रकार के अनुभव होंगे, एक है साइलेंस का अनुभव, दूसरा अनुभव है कि आने वाली आत्माओं को भी आप अपनी साइलेंस की शक्ति के द्वारा वाइब्रेशन पहुंचा। वो तो आवाज करेंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन कोई भी आवाज करे, कोई कुछ करे, हमें ये लक्ष्य रखना है कि मुझे बाबा के साथ अनुभव करते हुए साइलेंस में रह करके विशेष अनुभव करने हैं। और पांडव भवन एक ऐसा स्थान है, कैसे साकार बाबा ने एक एक कदम रख करके एक एक कण कण को ऐसा शक्तिशाली बनाया है, और वो शक्ति का अनुभव हमें न्यारा और प्यारा होता है। हम रहने वाले तो अनुभव करते ही हैं, लेकिन बाहर से आने वाले भी बहुत अनुभव करके जाते हैं। इसमें मैं आपको एक दो उदाहरण बताती हूँ। एक बार एक बहुत बड़े महात्मा पांडव भवन के गेट के अंदर एंटर किया। महात्मा जो बहुत अच्छे अच्छे ऐसे वाइब्रेशन को कैच भी करते हैं, एंटर करते ही, गेट पर एंटर करते ही अंदर पहुंचते एक ही शब्द बोला कि बाबा की तपस्या के वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहे। उनको अपने ज्ञान का अहंकार होता है, वो समझते हमारे जैसा ज्ञानी और योगी कोई नहीं है, लेकिन उनका आना और ये शब्द कहना ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कैसे बाबा ने इस धरनी के अंदर कदम रखते हुए एक एक कण को महत्वपूर्ण बनाया। एक और उदाहरण सुनाती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि एक भाई किसी से मिलने के लिए आया, तो हमने उसको बोला तुम रिसेप्शन में चल के बैठो। तो रिसेप्शन में चल के बैठो, बोला नहीं मैं यहीं आंगन में बैठा रहूंगा। क्यों? आप जब तक वो बहन मिले, कहते वो बहन का मिलना तो केवल बहाना था, यहां जो मुझे शक्ति मिल रही है ऐसा लगता है कोई शक्ति की किरणें मेरे दिल को छू रही हैं, ऊपर से प्यार टपक रहा है, शांति की लहरें मेरे सामने आ रही हैं। ना जिसको ज्ञान, ना इंस्टीट्यूशन का पता, ये ब्रह्मा इंस्टीट्यूशन क्या है, किससे मिलने आया है, वो उसको अनुभव हुए। जब बाहर वाला बिना जाने पहचाने इस धरनी पर कदम रखते ही इतने गहरे अनुभव प्राप्त करता है, तो आप तो हम बाबा के बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं, बाबा की ऐसी धरनी पर भट्टी करने का मौका मिल रहा है। तो मैं आपको दो चार बातें और बताऊंगी बाबा की और मम्मा की, कैसे बाबा अमृत वेले योग के बाद यहाँ पांडव भवन के आंगन में जो दादी जी का ऑफिस है वहाँ खड़े हो जाते थे। और यही महीने थे, मई जून का महीना था, अभी तो आपका अप्रैल का है। उस समय बाबा खड़े होकर के, थोड़ी सी दादियाँ थी, थोड़े से भाई बहने थे, सबको दृष्टि देते हुए बाबा ऐसे उड़ा देते थे जैसे सारे फरिश्ते खड़े हैं। फिर बाबा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए निवेद भाई का जो ऑफिस है वहां पर दूसरे प्रकार की उस समय सीढ़ियां थी, थोड़ी पहाड़ी टाइप थी, वहां खड़े होकर के दृष्टि देते हुए बाबा बच्चों को वरदान देते थे। फिर वरदानी बोल बोल करके बाबा आगे बढ़ते हुए, जो हमारा ऑफिस है ये ऑफिस नहीं था, ये पहाड़ी थी, और साकार बाबा के टाइम पर ये छोटा सा बगीचा था, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। बाबा वहां पर कभी मुरली क्लास से पहले और कभी अमृत वेले से पहले वहां पर आकर के फूलों को देखते थे, और कभी कभी कुछ फूल वहां से लेकर के क्लास में भी आते थे। और कभी मुरली क्लास से पहले बाबा यहाँ बगीचे के अंदर, फूलों का बगीचा था, चक्कर लगा करके फूल लेकर के आते थे। तो बाबा वहां पर खड़े होकर के बच्चों को पहाड़ी पर खड़े होकर के दृष्टि देते देते ऐसे उड़ा देते थे। तो एक बार क्या हुआ, दादी प्रकाश मणि जी का कमरा हमारे ऑफिस के बिल्कुल सामने है, वहां खिड़की से दादी जी देखती हैं। तो एक दिन दादी वहां से देख रही थी, और ऑफिस के बाहर जो थल्ला, अभी तो अच्छा थल्ला बना है, उस समय तो ऐसा ही था सिंपल, तो काफी सारे भाई बहने बैठे हुए थे। दादी कहती मुझे को अब मालूम पड़ा तुम सब यहाँ क्यों बैठे हो। तो दादी ने कहानी सुनाई, दादी ने कहा ये बाबा के कदमों की भूमि, इसलिए यहाँ के बैठ जाते हैं, इतने अच्छे से अनुभव करते हैं। अभी भी नीचे से आती है ना माता, ढेर वहां बैठी रहती हैं, तो हम कई कहते इनको उठाओ, मैंने कहते नहीं, जो सुख इनको मिल रहा बैठे रहने दो, इतना बैठी रहती हैं, प्यार से बैठी रहती हैं। तो उस धरनी पर जहाँ बाबा ने कदम रखा, जहाँ दादियों ने बाबा के साथ चल करके इतने अच्छे अच्छे अनुभव किए, तो वो तो कमाल है। फिर उसके बाद बाबा गेट के बाहर जाते थे, उस समय साकार बाबा के टाइम ये जो गेट है बहुत सिंपल सा गेट था, गेट के बाहर जाते और बाहर जाकर के चक्कर लगाते हुए बाबा कहते फरिश्ते सारे विश्व के अंदर उड़ जाओ, सारे विश्व के अंदर साकाश दो। उस समय विश्व क्या था, यही माउंट आबू हमारे लिए विश्व था। फिर बाबा कभी कभी आकर के जहाँ श्री कृष्ण का चित्र है ना, वो पहाड़ी थी वहां पर उसके पीछे, तो बाबा वहां खड़े हो जाते थे और कहते थे आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे बच्चे, ऐसे बाबा वहां पसार के खड़े हैं। और मुझे मालूम है कि याद है 1967 के अंदर पहली प्रदर्शनी यहाँ पर हुई थी, तो हम सब ने माउंट आबू में, तो हम सब प्रभात फेरी में वो झंडे लेकर के गए थे, और प्रभात फेरी पहले भी पंजाब में लगती थी, प्रभात फेरी सुबह से उठ के जन नारे लगाते थे, या पुरानों को याद होगा, अभी तो नए नए हैं, उठो उठो सोने वाले दिन चढ़ा, ऐसे से बोलते थे हम लोग, सोने का वक्त नहीं भाई, और ऐसे ऐसे स्लोगन भी करते थे, गीत भी गाते थे। तो वो स्लोगन ऐसे करते करते हम आए तो बाबा गुलाब बाशी लेकर के खड़े थे। अब गुलाब बाशी बाबा बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, वो सीन देखने का था कि बाबा बच्चों को बहुत प्यार दे। वो गुलाबाशी नहीं थी, वो वरदानों की बौछार थी। तो बाबा ने उस पहाड़ी पर खड़े होकर के बच्चों को इतने वरदान दिए, इतने वरदान दिए हैं जो बात मत पूछो। फिर दूसरी बात आपको बताएं, जहां आप मेडिटेशन हॉल में बट्टी कर रहे हैं, ये स्थान की बहुत विशेषता है। ये मेडिटेशन हॉल जो है ये पहाड़ी थी। आप बाबा की हिस्ट्री हॉल में बाबा की एक फोटो देखेंगे, पहाड़ी पर बाबा ऐसे बहुत खुदाई मलाई मस्ती में लेटे हुए हैं। वो कहाँ का दृश्य, वो यहाँ का। ये बाबा के अव्यक्त होने के बाद जब बाबा के बहुत बच्चे आने लगे तो ये हॉल जो है 1975 में बना है। मैं मधुबन में उससे पहले रहती हूँ, हमारे होते ही ये हॉल बना है। और फिर 1976 से अव्यक्त बाप दादा इसी हॉल में आए, और अव्यक्त बाप दादा यहाँ बैठे हैं और हम सब बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं। कोई कुर्सी नहीं थी, कोई सोफा नहीं था, कुछ नहीं था। एक सोफा होता था बड़ी दीदी के लिए, दादी भी सामने, सब भाई बहने सामने। ऐसा लगता था जैसे बाप के साथ सारे बच्चे बैठे। तो बाप अव्यक्त बाप दादा भी, साकार बाबा भी यहाँ तपस्या की। साकार बाबा की याद आएगी कैसे, मस्ती में रह के झूले में जो। मम्मा भी यहाँ आकर के तपस्या करती थी, दादियां भी यहाँ बाबा के साथ रू रूहान करते थे। और फिर अव्यक्त बाबा का कितना समय पार चला, 1982 तक चला, और 1983 में ओम शांति भवन में अव्यक्त बाप दादा आने लगे। तो ये मेडिटेशन हॉल जो है ये ऐसा हॉल है जिसके अंदर आपको जो तपस्या करने का मौका मिल रहा है, ये बाबा के विशेष तपस्वी स्थान है। अव्यक्त बाप दादा का बच्चों के लिए वरदानी स्थान है, तो इसलिए इस हॉल में तपस्या करते हुए साकार बाबा के पास पहुंच जाओ और मामा के पास पहुंच जाओ, अव्यक्त बाप दादा से वरदानों को भरपूर करो। और हिस्ट्री हॉल तो बाबा मम्मा और दादियों की यादगार। हिस्ट्री हॉल में बाबा क्या करते थे, मुरली चलाते चलाते खड़े हो जाते, एक एक बच्चे के पास आके दृष्टि देते थे, दृष्टि देते देते उड़ा देते थे। अब हिस्ट्री हॉल में जाएंगे, वहां जाके जब आप तपस्या करें तो देखना कैसे बाबा उड़ा देते हैं। और शांति स्तंभ तो क्या कहलाता है, बाबा जैसे लाइट हाउस हमारे सामने खड़ा, एकदम बाबा ऐसे खड़ा है कि लाइट हाउस बनकर के सारे विश्व के अंदर लाइट फैलानी। वो वैसा वो ग्राउंड है जहां पर साकार बाबा बच्चों के साथ खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। और बैडमिंटन खेलते खेलते क्या होता था, कभी कभी ना बाबा बच्चों को जितावा देते थे, तो फिर बच्चे कहते थे बाबा हार गया है? तो मम्मा कहती थी, फिर बाबा कहते अच्छा कोई बात नहीं है, बाबा ने कहा हार गया नहीं, बच्चे बाबा के गले का हार बन गए। बाबा ने हार शब्द को कभी नहीं कहा कि हार गया। तो बाबा वहां बच्चों के साथ खेलते थे, बाबा बच्चों का हाथ पकड़ करके चलते थे, बाबा वहां पर बच्चों को शिक्षाएं देते थे। आज वो शांति स्तंभ भी बाबा की सारी शिक्षाएं हमें दे रहा है। इसलिए जब आपको ये चारों धाम की यात्रा करने का मौका मिलेगा तो चार ग्रुप में करेंगे, सब तो एक स्थान पर नहीं बैठ सकते है ना, तो वो अनुभव करना है। फिर देखना आप ऐसा अनुभव करेंगे कि बाबा हमको चला। फिर आपके अनुभव को देख करके चंद्रमणि दादी भी बोलेगी, वाह मेरे बाबा के बच्चे, वो तो हमेशा बहुत खुश होती थी। कुरुक्षेत्र में पहुंची, बात मत पूछो। और मनोहर दादी तो कुरुक्षेत्र में चक्कर लगाती रहती थी, जब कोई गीता ज्ञान का है तो वो पहुंच जाती थी। बाबा उसको बोलते थे मनोहर दादी को जाओ तुम कुरुक्षेत्र में जाओ। और चंद्रमणि दादी तो पंजाब जोन की इंचार्ज थी और वो भी पहुंच जाती थी। कुरुक्षेत्र में तो कितने प्रोग्राम्स हुए हैं, हुए ना प्रोग्राम, जगदीश भाई भी वहां पर पहुंचे। और जम्मू के लिए तो बाबा ने ऐसे हैंड्स भेजे कि जो उनको गुप्त रीति से उनकी सेवा करते रहें। तो इसलिए आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन स्वागत के साथ साथ एक बात का ध्यान रखना, जितना आप साइलेंस में रहें आवाज नहीं करना, फिर क्या करेंगे तुम्हारे साथी नहीं, ए जल्दी आओ टाइम हो गया, बट ठीक ऐसे मत बोलना, जोर जोर से आवाज लगा के किसको मत बुलाना, बिल्कुल धीरे से अव्यक्त इशारे से। और फोन बट्टी के टाइम पर बंद रखेंगे ना, और दिन में कोई बहुत जरूरी काम हो तब बात करना, और नहीं तो उनको बता दो कि आज मैं इतने बजे तक मेरा फोन बंद रहेगा। और साथ साथ और ये भी ध्यान रखना है कि जो भी क्लासेस होंगी ना उसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। और दिन के टाइम थोड़ा सुस्त नहीं बनने का, दिन के टाइम माया बड़ा तो करती है, खेल करती है। आज बाबा एक दिन बाबा कह रहे थे माया नाक से पकड़ती है, माया कान से पकड़ती है, माया जोर से थप्पड़ मारती है, मुंह पीछे कर देती है। क्या रूप होगा उस समय किसका, मुंह पीछे और चल रहा हो आगे तो कैसे लगेगा। दिन के टाइम थोड़ी सुस्ती आ जाती है ना, तो इसलिए आप सबके लिए थोड़ा रिफ्रेशमेंट का भी रखा है। अगर थोड़ा सुस्ती आए तो पहले से गर्म पानी वगैरह कुछ पी के आके बैठने का, ताकि पूरा पूरा बट्टी का लाभ ले सके। अच्छा, और आपको सबको बहुत बहुत मुबारक है। और जैसे बहन जी ने बताया, आप सबके भोजन की व्यवस्था ऊपर के डाइनिंग हॉल में है। अगर आप में से कोई नहीं भी चढ़ सकते हैं तो वहां पर लिफ्ट भी है, और लिफ्ट के द्वारा इनके गाइड हैं कोई जिनको लिफ्ट दिखाएंगे, कोई भी नहीं है गाइड इनके। अच्छा, खाना खिलाने की ड्यूटी किसकी है, है कोई आपके सेवादारियों में, तो उनको पता होगा ना लिफ्ट है उधर पीछे जहां पर वो कांच वाला है ना, और कांच वाला जो डाइनिंग हॉल है उसके पीछे जाते हैं वहां लिफ्ट है। जो माताएं नहीं चढ़ सकती हैं, बहुत डिफिकल्टी है, वो केशव के हॉल में खाए, नहीं तो सब ऊपर ही खाएंगे, क्योंकि नहीं चढ़ सकते तो लिफ्ट है ऊपर, ठीक है। अच्छा, बाकी सेवादारी के लिए वो जीतू भाई से मिलना होगा, मिले नहीं है फिर वो बता देंगे किसकी क्या क्या ड्यूटी, मिल लिया ना। खाना खिलाने वाले किसकी ड्यूटी है, हाथ खड़ा करो। अच्छा ठीक है, तो जब हम टोली बांटेंगे, आज तो खाना खिलाने वाले आज तो पैसे लें, तो नहीं तो पहले ये टोली ले लेंगे, है? हाँ पहले। अच्छा, अभी हम सभी रात का है इनका कोई प्रोग्राम, आज नहीं है, थके हुए आए ना। जम्मू वाले कितने बजे पहुंचे, दोपहर को पहुंचे है ना, हाथ खड़ा करो जम्मू कश्मीर के, बड़ा ग्रुप है न? अच्छा अच्छा, ये कुरुक्षेत्र के बराबर बराबर है, ठीक है, सब ठीक है, आराम से, कोई तकलीफ तो नहीं है कमरों में, मौसम भी अच्छा है, ज्यादा गर्म नहीं है, यहाँ माउंट में पहाड़ी पर तो मौसम वैसे ही अच्छा रहता है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, और उसके बाद पहले खाना खिलाने वाले आएंगे, फिर धीरे धीरे टोली लेकर के फिर आप सभी भोजन करने के लिए जाएंगे। और हॉल के अंदर या बाहर कोई भी आवाज कर रहा हो, लेकिन आप साइलेंस में, और एक बात का ध्यान रखना, किससे बैठ कर के मत पूछते रहना आप योग कैसे लगाते हैं, हमारा तो योग लगता नहीं है, हम कैसे करें। आपको 10 प्रकार के लोग 10 प्रकार का चार्ट दे देंगे। अभी बट्टी मीन्स योग में हो, प्रश्न पूछने मत चले जाना इधर उधर, फिर क्या होगा, जो बट्टी का अनुभव करना है ना वो नहीं कर पाएंगे। बट्टी मीन्स बाबा की गोदी में, बट्टी मीन्स बाबा के प्यार में। योग क्या है, बाबा के प्यार में खो जाओ। आज भी बाबा ने कहा मुरली में माला का दाना बनना है तो क्या करो, याद की यात्रा में रहो। इसलिए इधर उधर ज्यादा बातें न करके और कारोबार की बातें नहीं करने की, आते हैं तो कई भाई बहने मिलते हैं ना, कई कारोबार की बातें होती हैं, सोचते चलो टाइम मिला इनसे कारोबार की बात कर ले, चलो पुरुषार्थ की बात कर ले, योग की बात कर ले, जो भी है वो आपको क्लास में बताया जाएगा, फिर भी कोई समझ नहीं आता तो टीचर से पूछो। बाकी एक एक से जाकर के बातें नहीं करनी है, तो बातें करेंगे ना फिर योग में जब बैठेंगे भट्टी में तो फिर वो अनुभव नहीं होगा। फिर बाबा ऊपर से दे रहा है, हम सोच रहे हैं बाबा देगा पता नहीं कब देगा, और वो तो ऊपर से पीछे जा रहा है, पीछे वाला ले रहा है और हम खाली बैठे हुए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बाबा मुझे ही दे रहा, मैं बाबा के पास हूँ, मैं बाबा की लाडली हूँ, मैं बाबा का लाडला बच्चा हूँ, बाबा ही मुझे भरपूर कर रहा। बस ये ध्यान रखना है तो फिर देखना आपकी झोली भरी हुई रहेगी। ओम शांति।
मधुबन की धर्म सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धर्म सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्यम से तेरा कर पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धर्मी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम।